قل كه ديجية يا أهل الكتاب، إيه أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إيه أهل الكتاب، يعني جب آپ ان کو مخاطب کریں، جب آپ ان کو، میں نے آپ کو بتایا نا، اس میں آپ کو دعوت کے سمجھ آئے گی کہ کیسے دعوت دینی ہے، دعویٰ کیسے کرتے ہیں. جب اہل کتاب کو بلانا ہے تو اب یہ اہم آیت ہے، بہت آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. کیسے ان کے ساتھ بات کرنی ہے؟ تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبود الا اللہ، کہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا نا کہ مانتے تو یہ بھی خدا کو تو تھے، اور ان کی جو پرانی بائبل تھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یسوع نے جواب دیا، اس سے کہا کہ میں کہ نہیں کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اس کی بندگی کر. یہ ان کی بائبل ہے مرکز، اس کے اندر ہے یہ بات کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اور یہ پیغام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تمام انبیاء کا یہ پیغام تھا. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 36 میں، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو. سورہ انبیاء میں آیت 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس میری ہی تم بندگی کرو. عبادت ہوتی کیا؟ بہت دفعہ آپ کو بتایا، اب تو سب کو یاد ہو جانا چاہیے، عربک میں یاد نہ کر لیں، کمال الذل مع کمال الحب، یعنی اپنے آپ کو اتنا زیادہ ذلت سے کہہ لیں، عاجزی سے کہہ لیں، اپنے آپ کو اتنا نیچا کر دینا مع کمال الحب، شدید محبت میں، شدید محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو جھکا دینا، گرا دینا، اپنے آپ کو نیچا کر دینا مگر محبت کے ساتھ، یہ ہے عبادت. اب آپ دیکھیں، ان لوگوں نے، اہل کتاب نے جو شرک کیا تھا، ان کا شرک جو تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی پتھروں کو پوجتے تھے یا پہاڑوں کو یا کوئی درختوں کو یا کوئی ایسی چیزوں کو، مگر ان کا شرک تھا کہ انسان پرستی انہوں نے کی، انسان کو پوجنا شروع کر دیا، انسان کو اتنا بڑھا کے وہ مقام دے دیا کہ جیسے کہ وہ یعنی خدا کے برابر. اور جب بھی کسی کو ایسا مقام دے دیا جائے کہ اس کا حکم اللہ کے حکم کے برابر سمجھا جائے یا اس جیسا سمجھا جائے، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، خاص طور پہ دین کے معاملات میں. جہاں پہ اللہ کی کوئی بات آئے، وہاں پر اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اس کی بات کو آگے کر دینا، یہ بھی شرک ہے، شرک فی الحکم ہے، اس حکم میں آپ نے شرک کر دیا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا جائے؟ وہ جس نے پیدا کیا، جس نے پالا پوسا، وہ رب ہے نا، رب، وہ رب جو اس وقت بھی رب تھا جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا، یو ڈنٹ ایگزسٹ، جب تم روحوں کی فارم میں تھے نا تب بھی وہ تمہارا رب تھا. پھر اس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری نگہداشت کی، اس نے نک سکھ سے تمہیں سنوارا، تمہیں بنایا، تمہاری فنیشنگ کی، ایک ایک چیز تمہاری دیکھو کس طرح سے خوبصورتی سے تخلیق کی، تمہارا دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، پھر یہاں پہ بھی جب آئے تو ہر چیز تمہارے لیے پہلے سے تیار کر کے رکھ دی. سورج بھی چمک رہا تھا، دن اور رات بھی تھے، چاند بھی تھے، ستارے بھی تھے، پانی بھی تھا، ہوا بھی تھی، کانے کو بھی تھا، ماں کی چھاتیوں سے بھی دودھ رواں کر دیا، اور پھر تمہارے دانت اگا دیے کہ تم اب اناج کھاؤ، غذا کھاؤ، غذا کا بھی انتظام کر دیا، تمہیں چلنا پھرنا، بولنا، دیکھنا، ہنسنا، رونا، سننا، سوچنا، سمجھنا، سب سکھایا. جب تم جوان ہو گئے تو تم نے کہا ہاں نہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کی بات نہیں میں ٹال سکتی،
ये क्या है? बच्चे कहते हैं, बच्चे मजबूर करते हैं, क्या करें आप? बच्चों की कैसे हम बात, जिदा बच्चों ने आपको पैदा किया था या आपने बच्चों को पैदा किया? चलो वालदेन की बात कर लेते, वालदेन ने कह दिया, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया ना वालदेन की मानो। वैसे हर काम में नहीं वालदेन की मानते, लेकिन इस काम में जहां पे अल्लाह ताला की बात आ जाए वहां पे वालदेन की बात फिर अच्छी लगने शुरू हो जाती है, क्योंकि खुद का दिल ये चाह रहा होता है ना। याद रखिए, किसी मखलूक की इताअत नहीं है अल्लाह की नाफरमानी में, यानी हदीस है, ला ताअत ली मखलूक फी मासियत अल खालिक। मखलूक की इताअत है ही नहीं, मखलूक की आपने फरमाबरदारी नहीं करनी फी मासियत अल खालिक, यानी खालिक की नाफरमानी में, कि खालिक की बात आ जाए, वो खालिक है, उसके आगे शौहर की बात नहीं चल सकती, उसके आगे वालदेन की बात नहीं चल सकती, बच्चों की बातें नहीं चल सकती, लोगों की बातें नहीं चल सकती, लेकिन हम कितने आराम से उठा के रख देते हैं अल्लाह की बात को एक तरफ, और बाकी सब की बातें इंपॉर्टेंट है, रहना जो उनमें, हमने क्या करें, उनमें रहना है, इसकी कितनी फिक्र है। और जिसके जमीन के ऊपर चल रहे हो उसकी नहीं फिक्र, जिसके आसमान के तले तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हो उसकी नहीं फिक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है ना सूरह मुल्क में, क्या इस बात से बेखौफ हो गए कि अल्लाह जमीन में इनको धंसा दे, इनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दे, आसमान इनके ऊपर फट पड़े, बेखौफ हो गए? कैसे फैसले करते हो? तो जिनमें रहना है उनकी बड़ी फिक्र है कि ये टेढ़ी नजर से ना देखें, इनको ना पसंद ना आ जाए, इनको ना गवार ना गुजर जाए, आए इनके चेहरों पे कहीं तेवरी ना आ जाए, कहीं बल ना पड़ जाए, ये मुझे अपनी दावतों पे बुलाना ना बंद कर दे, कितनी उनकी फिक्र है, ना मुझसे नाराज ना हो जाए, मुझसे फ्रेंडशिप ना तोड़ दे। वो ये नहीं देखते सांस जिसके कंट्रोल में है कहीं वो ना नाराज हो जाए, जिस्म जिसके हुक्म पे चल रहा है कहीं वो ना नाराज हो जाए, जमीन जिसके हुक्म पे ठहरी हुई कहीं वो ना नाराज हो जाए, आसमान थमा हुआ है जिसके हुक्म से कहीं वो ना नाराज हो जाए। ये कितनी दफा सोचते हो? तो अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, ये है तौहीद, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम नहीं इबादत करें मगर अल्लाह की। आप सोचेंगे आज के तो नहीं कहते, ये तो कलमा सवान है ही नहीं है, ये तो बराबर है ही नहीं। नहीं, इसलिए बराबर कि देखें खुदा को तो मानते हैं ना वो, कि खुदा है और उसके सिवा किसी और को ना मानो, यानी सबसे पहला पैगाम तुमने तौहीद का देना है। यहां से नहीं स्टार्ट करना कि आप शराब नहीं फिर पी सकते, देखिए फिर आपको अपने हस्बैंड को छोड़ना पड़ेगा अगर आप इस्लाम ले आए तो, नहीं, तौहीद से शुरू करो, तौहीद से। जैसे वो एक आदमी था, वो आ रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कि ईमान लेकर आए, तो कुछ लोगों ने उसको कहा तुम्हें पता है इस्लाम लाने में क्या है, तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये। उसने कहा हाँ छोड़ दूंगा, हाँ ये भी छोड़ दूंगा, ये। आखिर में उन्होंने कहा तुझे शराब छोड़नी पड़ेगी। उसने कहा वो नहीं, मैं छोड़ सकता, मैं वो नहीं छोड़ सकता। वो वापस चला गया और उसको मौत आ गई उसी कुफर में। सबसे पहली चीज जिस पे एम्फसाइज करना है और जिसकी तरफ बुलाना है वो तौहीद है। और याद रखें एक बात, तौहीद के जिमन में, रिगार्डिंग तौहीद, बहुत अच्छी तरह जो हमें बात समझनी है, तौहीद ये नहीं है कि अल्लाह इला है, अल्लाह खुदा है, ये तौहीद नहीं है मुकम्मल। अगर कोई ये समझता है ना कि ये बस तौहीद हो गई, तो वो उसने तौहीद को समझा ही नहीं है। तौहीद समझनी है ना, तो ये अपने, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तौहीद को तो समझे हम, तौहीद समझनी है तो कलमे में पहला पार्ट क्या है? टू पार्ट्स है ना कलमे। चलो पहला वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ दें, अभी सिर्फ पहला पार्ट अगर आप लें तौहीद वाला पार्ट, तो उसमें क्या है? उसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं। ये बातें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी समझने की है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। पहला कंपोनेंट क्या है? ला इलाहा। पहले आपको क्या करना है? डिनाई करना है, रिफ्यूज करना है, निगेट करना है तमाम इलाहों को जो भी एग्जिस्ट करते हो, वो पैगंबर है, वो कोई औलिया अल्लाह है, वो कोई बुत है, कोई पत्थर है, कोई दरख्त है, कोई सांप है, कोई चूहा है, उनकी भी तो पूजा होती है, सब को कहना नहीं है कोई इला। उसके बाद कहना इल्लल्लाह, इला सिर्फ अल्लाह, अल्लाह इला है, ये हमारा कलमा नहीं है। हमारा कलमा पहले निगेशन है, निगेट करोगे तो उसके बाद फिर आप तौहीद का इस बात करोगे, अफर्म करोगे तौहीद को। आपने अगर निगेशन नहीं की ना, मैं यकफुर बिताहूत व युमिन बिल्लाह, पढ़ा था ना सूरह बकरा में, ताहूत का पहले इनकार, ताहूत को पहले कहना कि मैं किसी भी हस्ती को जो अपनी इबादत के लिए बुलाए, जो अपनी इबादत का कहे, उसको नहीं मानती, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खुदा कहते हैं कि एक खुदा है जी, लेकिन और भी हैं, यहां पे तो जाके टांग टूटती है, और भी हैं। कलमा आपने शुरू ही करना किससे, ला इलाहा से, ला से, ला ला ला, इस ला को नहीं समझे। अपने मुसलमानों में बहुत सारे लोग हैं, हाँ अल्लाह है खुदा वो, लेकिन यहां पे गड़बड़ आ गई, लेकिन ये भी है, ये भी है, इससे मांगो, इससे मुरादें पूरी होती हैं, इसके आगे माथे टेको, ये खुश हो जाएगा तो सब काम बन जाएंगे, इसके ऊपर भरोसा करो, इसने चाह लिया तो काम हो गया, 24 घंटे में काम हो जाएगा मेरा। कहीं कोई कब्र है, कहीं कोई खड़े हुए इंसान है, कहीं पैसा है, कहीं लोग हैं, तो बहुत सारे खुदा बनाए हुए, पैसा भी खुदा बनाते हैं लोग। यहां पे देखिए ना, वला नुशरिक बिही शैअन, किसी चीज को, चीज किसी चीज को भी खुदा क्या शरीक नहीं करेंगे। तो चीजों के अंदर पैसा तो सबसे पहले है, पैसा तो सबसे पहले है जिसको के खुदा के बराबर लाए होते, पैसा जहां से मिल रहा है उधर ही सजदे हैं, पैसा कहीं नुकसान ना हो जाए उसकी खातिर फिर कुछ भी करने को तैयार है। पैसे की पूजा होती है, पैसे को सामने रख के सजदे नहीं किए जाते, मगर ये जो माल है ना, इसका भी बुत है जो दिलों के अंदर खड़ा होता है, जिसको दिन रात उसके आगे माथा टेकते हैं, पैसा पैसा, पैसे के मुताबिक हर एक को देखते हैं, पैसा उनका खुदा है बस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हलाक हो गया अब्दुल दिरहम, हलाक हो गया अब्दुल दिनार, तो क्या आज हलाक नहीं हुआ अब्दुल डॉलर? हाँ, डॉलर का बंदा नहीं हलाक होने वाला? तो अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, तो पहले डिनाई करो सबको, मुझे ये कब्र वाले से नहीं मिलना, मुझे इस आदमी के पर भरोसा करके नहीं मिलना, मेरे ये काम नहीं बना सकता, चाहे वो कितना ही कह रहा है 24 घंटे में आपका काम हो जाएगा, महबूब कदमों में होगा फला, नहीं, कोई इलाह नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है मगर अल्लाह की ज़ात। और इबादत के अंदर याद रखिए, ये सारे जो रिचुअल है ना, मरासिम इबादत, ये सब इसमें आ जाते हैं, सजदा करना, दुआ मांगना, ये सब इबादत के मरासिम है, रिचुअल्स हैं इबादत के, उसके कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, इबादत इनके जरिए की जाती है, तो जराए हैं इबादत के ये, आप जिसके लिए ये करेंगे आप उसकी इबादत कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। आप किसी के आगे सजदा करते हैं, आप उसकी इबादत कर रहे हैं, किसी के आगे झुकना, किसी से दुआएं मांगना, हमारी आपके आगे, आपकी अल्लाह के आगे, तो हम तो आपके आगे पेश कर रहे हैं ना, किसको कहते हैं, उन्हीं के आगे हाथ उठा कर, जब आप एक कब्र पे उनकी तरफ मुंह करके हाथ उठा के कह रहे होते हैं हमारी आपके आगे, तो किसको कह रहे हैं, किससे दुआ कर रहे हैं, बैठ के यहां पे बैठ के और कहना कि या अब्दुल कादिर जिलानी, या गौसे आजम मदद, या खिजर मदद, वो समंदरों के ऊपर उनका वो है, या अली मदद, या फला मदद, या रसूलुल्लाह मदद, कुछ भी कह दे, याद रखिए
कोई इंसान, चाहे वो पैगंबर है, चाहे वो सहाबी है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो शेख है, चाहे वो इमाम है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वो हस्बैंड, नहीं कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह। ठीक है, वला नुशरीक बिही शैअन, हम किसी को भी नहीं शरीक करते उसके साथ। ये मामला इतना सेंसिटिव है कि शिर्क का जहां पे शायबा भी हो ना, शक भी हो, वो भी नहीं करना। अब देखिए एक हदीस में आता है, अब सामने नहीं है मेरी हदीस, में अपने अल्फाज में आपको बता रही हूँ कि एक आदमी मक्खी की वजह से जहन्नुम में गया। कैसे? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो आदमी गुजर रहा था किसी बस्ती से, उन्होंने कहा आप यहां से गुजर नहीं सकते जब तक कि हमारे जो बुत हैं उनके ऊपर कोई चढ़ावा ना चढ़ाए। उसने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। उन्होंने कहा कुछ ज्यादा नहीं है तो तुम एक मक्खी मार के वही हमारे बुतों के आगे चढ़ा दो। उसने कहा ठीक है। उसने वो मक्खी मारी और उनके बुतों के ऊपर चढ़ा दी, उसकी वजह से ही वो जहन्नुम में गया, नहीं किसी और के नाम की नजर मगर अल्लाह की, नहीं किसी और के नाम की कसम मगर अल्लाह की। ठीक है, तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है क्योंकि अल्लाह शिर्क को नहीं बख्शेगा, बाकी जिस गुनाह को चाहे वो बख्श दे। आगे हम सूरह निसा में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। शिर्क मगर अल्लाह ने बख्शना नहीं है, इसको लेके अगर मर गए ना वो बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत है। तौहीद को समझो, समझो शिर्क क्या है। हम क्या दूसरों को बताएंगे, हमें तो खुद ही नहीं पता। हम क्या उनको दावत देंगे कि शिर्क ना करो, हम खुद शिर्क में मुलविस हैं। इधर कलमा भी पढ़ते हैं, उधर माथे भी कहीं और टेकते हैं। देखिए इतनी तक ये सेंसिटिव बात को सोचें। आपके जगह मैंने पढ़ा कि अकबर के जमाने में उसने कहा कि ऐसे कोई कोई कलिमात लिखाए जाएं जो यानी मोहर वगैरह के लिए ना, शाही मोहर के लिए कोई ऐसे अल्फाज होने चाहिए जैसे आप देखते हैं। तो उलमा ने मुशावरत शुरू कर दी कि क्या अल्फाज होने चाहिए शाही मोहर के लिए। तो एक आलिम ने खड़े होके कहा मशवरे के बाद कि अल्लाह हु अकबर, ये बड़े अच्छे कलमात है तो ये लिखवाने चाहिए। तो उन्होंने सबने कहा कि हाँ भाई ठीक है। अब एक आलिम जो थे वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं ये इबारत सही नहीं है, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह अकबर है, अल्लाह सबसे बड़ा है, और दूसरा अल्लाह अकबर यानी ये भी माना है कि अकबर बादशाह, अल्लाह अकबर बादशाह क्योंकि उसका नाम भी अकबर था। तो अकबर ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। और खामोशी के बाद फिर उसने कहा कि ठीक है कोई और अल्फाज बयान किए जाएं, फिर आप ही बताएं क्या रखें। तो उसने कहा वला जिक्रुल्लाह अकबर, ये रखते अल्लाह का जिक्र बड़ा है। उसने कहा ठीक है। जब सारे लोग चले गए तो अकबर बादशाह ने उन आलिम को बुलाया और उनको कहा कि मैंने तो इस नीयत से नहीं ये करा था कि अल्लाह अकबर का माना मैं अपना समझ रहा हूँ कि मैं अकबर हूँ। तो उन्होंने उन आलिम दीन, उनका नाम इब्राहिम था, उन्होंने न डर रोके ये तारीखी अल्फाज कहे थे कि ऐ शाहे हिंद, उस जात वहदहु ला शरीक को अपनी जात में जरा सा भी जहां शिर्क का इम्कान भी हो ना, इम्कानी शिर्क भी उसको नापसंद है, जहां पे जरा सा शिर्क हो वो भी उसको नापसंद है। तो उन्होंने कहा कि ये शिर्क का शुबा इसमें हो सकता था, तो जिसमें शिर्क का शुबा भी हो वो बात भी सही नहीं है। तो इससे आप सोचें कि बाज अल्फाज हम ये कहते हैं कि जो हम अल्फाज समझते हैं कि ये अल्फाज कोई बात नहीं हमारी जुबान का हिस्सा है तो हम उनको आराम से बोल जाते हैं। तो ये देखना चाहिए कि ऐसे कोई भी अल्फाज जिसमें जरा भी आपको लग रहा हो कि यहां पे कोई शिर्क की बात हो सकती है वो भी नहीं कहने चाहिए, यहां पे कोई इम्कान हो सकता है शिर्क का वो भी नहीं बोलने चाहिए। ये नहीं कि आपकी नियत होती है, नियत नहीं, जैसे मैंने आपको बताया उसने कहा मेरी नियत तो नहीं थी इस तरह की, नहीं कहा नहीं, अल्लाह ताला को इम्कानी शिर्क भी नहीं पसंद।
हम इस तरह की भी बातें ना करें, हाँ मुझे इस दवाई से ही आराम आया, नहीं, अल्लाह ने इसके अंदर शिफा डाली है मेरे लिए, अल्लाह ने डॉक्टर के हाथ में शिफा। हालांकि हम कोई, मैं आपको इसलिए ये वाक्य सुनाना चाहती थी कि देखिए हमारी भी नीयत थोड़ी होती है, हम लेकिन अपने थोड़े से अल्फाज को अगर हम चेंज कर लेना तो बेहतर, ठीक है, अपने अल्फाज में ये लेकर आए कि अल्लाह के करने से ये हुआ, अल्लाह ताला की हेल्प से ये काम पाया, तकमील को पहुंचा, यानी कि मैंने किया, उसने किया, फलाने ने कर दिया, फलाना ना मदद करता, ये ना होता, फलाना नहीं, अल्लाह की मदद से, ठीक है। ये नहीं कह रही कि आप लोग शिर्क कर रहे हैं इस तरह, नहीं, मगर इम्कान भी जिसमें हो सकता है, इसमें जरा सा भी शाइबा हो सकता है, वो छोड़ देना, ऐसे तमाम मुहावरे छोड़ दे जो अल्लाह की शान के लायक नहीं है। हम जब कहते हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है हर ऐब से, हर कमजोरी से, हर ऐसी चीज से जो कि उसकी शान के लायक नहीं है, उससे वो पाक है, तो फिर क्यों ऐसे कहते हैं अल्लाह मियाँ की गाय, क्यों कहते हैं अल्लाह के पिछवाड़े में, ये किस किस्म के मुहावरे हैं, पता है किसकी बात कर रहे हो, कुछ समझ भी है किसका बोल रहे हो, यानी कोई दूर हो तो कह देते हैं ये अल्लाह मियाँ के पिछवाड़े, तो वो खुदा का खौफ नहीं है, ये अपने मुसलमानों के मुंह से जब मैं ये अल्फाज सुनती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ, इनको पता भी है ये क्या कह रहे हैं। इसी तो किस्म के और भी कई मुहावरे, ये तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही रख दिए तो मेरे जेहन में आए, तो ये बातें मामूली नहीं है, ये बातें वो हैं जिनके ऊपर बड़ी पकड़ हो सकती है, ये मुंह से बोले वाला बस ऐसे अंधाधुंध बोलते रहना। फिर इसी तरह आप देखें जो लोग गाने सुनने के बड़े शौकीन होते हैं, कितने सारे उनके अंदर शायरी के अंदर शिरकिया अल्फाज होते हैं, सजदा मैं तुझे कर रहा हूं, पता नहीं क्या क्या मेरे सामने, मुझे नहीं आते, मगर सजदे की हद तक मैं तेरी पूजा करता हूं, इस हद तक कह दिया जाता है अशआर में, और हम जी बड़े मजे से वो गाते रहते हैं, शादियों पे गा रहे हैं, उस पे जा रहे हैं, और क्योंकि वो उनके होते हैं, उनसे हमने ले लिए, उनकी फिल्मों से देख के, उनकी उससे देख के, तो हम भी गाते रहते, मगर मजा लगे कोई किसी को ये समझ हो कि मैं बोल क्या रहा हूं, मैं क्या कह रही हूं, अंधाधुंध बस गाते चले जाते हैं। तो ये सब चीजों को सोचना चाहिए, इसीलिए हमने अकीदा एक सब्जेक्ट रखा है कि हमें समझना चाहिए हमारा अकीदा है क्या, हमें तो पता ही नहीं, हम तो पता नहीं क्या समझ के बैठे होते, क्या कर रहे होते, तो बहुत जरूरी है कि समझा जाए शिर्क किस चीजों के अंदर होता है, मुझे शिर्क से बचना है, जिसमें शुबा भी है मुझे वो काम नहीं करना, शिर्क का, शिर्क माफ नहीं होना, अब इसके ऊपर बहसें करने बैठ जाए, नहीं ये तो शिर्क नहीं, नहीं वो तो शिर्क, आप ये सोचें कि जिस चीज के अंदर आपको शुबा हो जाए कि इसमें पेशाब पड़ गया, नहीं पड़ा, चलो आप जी आप कैसे कह सकते हैं, आप यकीनी तो नहीं कह सकती, आप ऐसे तो नहीं, नहीं शक है सिर्फ, तो पी लेंगी क्या उसको, नहीं पिएंगी ना, लेकिन जो अल्लाह के साथ शिर्क के कलिमात है, शुबा भी हो जाए उससे दूर भागे, नहीं कहते नहीं बहसें शुरू कर देते हैं, नहीं जी इसके अंदर कहां से शिर्क है, ये आप कैसे कह सकते, भैया आप छोड़ दें उन चीजों को जिनको आपको जरा भी शक पड़ गया, हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम अल्लाह के हजूर खड़े हो किसी ऐसी चीज के साथ जिसमें जरा बराबर भी शिर्क हो। देखें शिर्क वो जहर है जो सब कुछ का बेड़ा गर्क कर देगा, जितनी मर्जी नेकियां कर लो, इबादतें कर लो, नमाजें पढ़ लो, कुराने पढ़ लो, नफली रोजे भी रखो, रमजान के भी रखो, हज उम्रे पे उम्रे कर रहे हैं, सब कर लो, अगर शिर्क जरा भी हो गया ना तो सब कुछ गारत, सब खत्म, अगर उसी के ऊपर मर गए तो, अगर तौबा किए बगैर मर गए सब खत्म, कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह के हाँ इन चीजों की, नमाजों और इनकी, बहुत नेक हैं, बहुत हिजाब लेते हैं, बहुत ये करते हैं, कुछ वैल्यू नहीं है अगर शिर्क आ गया तो, इसलिए शिर्क से बचें, शिर्क को समझें, शिर्क को अपने अकीदे से निकालें। बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान भी हैं, अल्लाह पर ईमान रखते भी हैं, लेकिन साथ शिर्क भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दूनिल्लाह,
और ना बनाए बाज बाज को, हम में से बाज बाज को रब ना बनाए अल्लाह के सिवा। ये क्यों कहेंगे? इसलिए क्योंकि मुसलमान जानते थे कि ईसाइयों के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपने ही बड़ों को, अपने उलमा को और अपने राहिबों को, अपने सेंट्स को रब बनाते हैं। कैसे रब बनाते हैं? ये क्वेश्चन उन्होंने किया। हम कैसे, अदी बिन हातिम, हातिम ताई का नाम सुना है आपने? हाँ, तो हातिम ताई के जो बेटे थे, हातिम ताई भी ईसाई थे, ईसाइयत में वो तो फौत हो चुके थे, उनके जो बेटे थे अदी, वो बहुत बाद में मुसलमान हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही, मगर मुसलमान हुए थे बहुत बाद में। उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम तो नहीं अपने उलमा को, राहबों को रब तो नहीं बनाते थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों, क्या तुम ऐसे नहीं करते थे कि जो वो हलाल कहते तुम उसको हलाल करते, और जो वो हराम कर देते तुम्हारे लिए तुम उसको हराम कर देते? वो कहते हाँ ये तो था। आपने फरमाया यही तो फिर शिर्क है, यही तो फिर उनको रब बनाना है। रब मतलब क्या होता है? मालिक, खालिक, मुदब्बिर, हाकिम, जिसके पास अथॉरिटी है कि वो आपको बताए ये हलाल है और ये हराम है। ये अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, कोई और ये अथॉरिटी नहीं रखता, और ना ही किसी को इंसान ये अथॉरिटी दे कि आप बताएंगे हलाल क्या है, आप बताएंगे हराम क्या है, आप हमारे लिए फैसले करें, आप मेरे हस्बैंड हैं, तो आपने जब हलाल कर दिया तो हलाल है मेरे लिए, आपने कह दिया नहीं बेगम ये तुम्हारे लिए हराम है, अगर तुमने ऐसा किया तो वो मेरे लिए हराम हो गया, तो रब किसको बनाया हुआ फिर? इसी तरह उलमा है, इसी तरह इमाम है, इसी तरह कोई भी है, इवन पैगंबरों के लिए भी ये हक नहीं है कि आप उनसे पूछें कि आप बताएं आप हलाल और हराम, सिर्फ ये अल्लाह का हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने ऊपर शहद हराम कर लिया तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? क्या फरमाया सूरह तहरीम में कि ऐ नबी आप क्यों उस चीज को अपने ऊपर हराम करते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की, आपने कैसे हराम कर ली? इसलिए किसी नबी के पास भी ये अथॉरिटी नहीं कि वो जिस चीज को चाहे हलाल कर ले, जिसको चाहे हराम कर ले, चाहे वो खाने पीने में है, चाहे वो पहनने ओढ़ने में है, चाहे वो कमाइयों में है, चाहे वो किसी किस्म की चीज में भी, जो अल्लाह ने हलाल की वो हलाल है, जो अल्लाह ने हराम कर दी वो हराम है। ठीक है, तो वो चूंकि ये काम करते थे तो उनको कहा गया कि वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाब मिन दुनिल्लाह, हम ना बनाए बाज, हम में से बाज को अरबाब रब ना बना ले अल्लाह के सिवा, ये अल्लाह ताला का ही हक है। ठीक है, फाइन तवल्लो, फिर अगर वो मुंह मोड़े फिर भी नहीं वो मानते बात को, आपने उनको बुलाया और उनको कहा कि हम नहीं इबादत करते मगर सिर्फ अल्लाह की, तो आओ ये एक कलमा है जो सवाए में बहीना ना हुआ बहीना को, यानी जब आप उनसे बात करें तो कॉमनैलिटी पे पहले बात करें, उस चीजों पे बात करें, उन पे ना बात करें जिससे बात करते ही झगड़ा शुरू हो जाए, कॉमन चीजों पे। तुम भी खुदा को मानते ना, हम भी मानते हैं, तुम भी ईसा अलैहि सलाम को मानते ना, हमारे नजदीक भी ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के रसूल है, तुम भी मानते ना ईसा अलैहि सलाम ने वापस आना है, हम भी मानते हैं ईसा अलैहि सलाम ने वापस आना है। स्टार्ट ही इससे ना करें, तुम गलत कहते हो कि वो सूली चढ़ाए गए, वो तो कोई नहीं सूली चढ़ाए गए, नहीं कॉमन बातों से बात शुरू करें, तो मानते ना ये खुदा है, हाँ मानते हैं वो खुदा का, तो इनकार थोड़ी करते हैं, तो यहां से बात करें। ये हिकमत होती है दावा देने की, ये हिकमत होती है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की, अल्लाह के साथ जोड़े लोगों को। ठीक है, सबसे पहले तौहीद की बात करें लोगों के साथ, तो ये है जिसके साथ बात स्टार्ट करनी चाहिए कि कॉमन ग्राउंड्स उनको ढूंढने चाहिए। मगर एक बात याद रखिए, कॉमन ग्राउंड्स का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप ही कॉम्प्रोमाइज शुरू कर दें। देखो हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई डिफरेंस ही नहीं है, नहीं कितना बड़ा डिफरेंस है, कितने बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस तो हैं, नहीं तुम भी ठीक हो हम भी ठीक है, ये कहां से कलमा हमने कर लिया? नहीं देखो गलत किसी को भी नहीं हम कहते, ये कहां से, ये सारे जुमले गलत है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हाँ कॉमन बात करनी है जो सेम है उनके और हमारे दरमियान, वो बात पे पहले शुरुआत करें,
मगर कॉम्प्रोमाइज ना कर लेना कहीं अपने दीन पे, कि उनको बुलाते बुलाते जैसे उस बादशाह ने सोचा कि अब हमने तबलीग कैसे करनी है, तो इससे लोगों को दीन आसान करके बताया जाए, तो शरीयत मूसवी को तो साइड पे डालो, सारी चीजों को कर दो, चलो बुत भी बना दिए, ये भी तस्वीरें भी बना दी, सब चीज कर दी, तो चलो लोग खुश हो जाएंगे और ईसाइयत इख्तियार कर लेंगे। तो हमारा ये मकसद नहीं कि किसी तरह हम इस्लाम को ही ट्विस्ट कर दें और फिर इनको ऐसे पेश करें, इस तरह इनके लिए इजी हो जाएगा ना, तो फिर ये आ जाएंगे। नहीं, क्योंकि किसी को मनवाना हमारा मकसद नहीं है, कि अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं है कि कोई माने कि नहीं माने, अल्लाह को नहीं परवाह, उसकी बादशाहत में कोई फर्क नहीं पड़ जाना। तुम मानते हो तुम अपना भला करते हो, तुम नहीं मानते तुम अपने साथ बुरा करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ऑफर किया था, आप ये मौजजा दिखा दें, वो कर दें, ऐसे बना दें, हम फिर मान जाएंगे, तो नहीं, अल्लाह ने दिखाया। आप एक दफा हमारे बुतों की पूजा कर लें, हम एक दफा आपके की कर लेंगे, नहीं। तौहीद पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं बिछ जाना उनके सामने कि इतने ही बिछ गए कि अपना भी दीन छोड़ दिया, अपना भूल ही गए, उनको मनाते मनाते। हमने मनाना नहीं है, हमने पहुंचाना है, समझ आई? देयर इज अ डिफरेंस। मनाने में क्या होगा, आप अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, पहुंचाने में क्या है, ये है भाई मैसेज, लेकिन हिकमत के साथ पहुंचाएंगे, ये है मैसेज, और ये मैसेज है, देखो इसके अंदर ये चीजें कॉमन है हमारी और तुम्हारी, ठीक है, वो आगे आप लेकर जाएंगे, समझ आई बात? इन तवल्ला फकूलो शादू भी अन्ना मुस्लिमों, अगर वो फिर भी नहीं समझते हैं बात को, तो आपने झुक नहीं जाना, आपने कहना मैं तो मुती और फरमा बरदार हूं, ये बात पहले और किसने की थी? तुम गवाह रहना कि हम मुस्लिम हैं, ये हवारियों ने कही थी। तो हवारी जो जीसस के, ईसा अलैहि सलाम के जो सबसे ज्यादा क्लोज थे और जो सबसे सच्चे थे, उन्होंने भी ये बात कही। असल तो ईसा अलैहि सलाम के मानने वाले तो वो ही थे ना, तो हम भी वही बात कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम के मानने वालों ने कही थी, और उन्होंने यही कहा था कि हम मुस्लिम हैं, तुम गवाह रहे ना, ठीक है। इससे ही पता चल जाता है कि हम गिव अप नहीं करेंगे अपना, अपने जो अपना दीन को, या अपने जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, या अपनी किसी भी चीज को, अपने दीन की हम गिव अप नहीं करेंगे तुम्हें दावत देने के लिए, तुम्हें मनाने के लिए, ठीक है। हमने नहीं अपना दीन छोड़ना। या अहलल किताब लिमा तुहाजुना फी इब्राहिम, तुम क्यों इब्राहिम अलैहि सलाम के बारे में बहसें करते हो? असल में इसका शाने नजूल क्या है कि जब ये नजरान का वफद आया हुआ था ना क्रिश्चियंस का, उस वक्त यहूदी भी तो मदीना में ही रहते थे, वो भी आ गए, वो आ गए, उनको पता चला था कि ये लोग आए हैं तो आ गए, और यहाँ पे बहस शुरू हो गई। वो यहूदी कहने लगे कि ईसा, वो इब्राहिम अलैहि सलाम यहूदी थे, ईसाई कहने लगे कि इब्राहिम अलैहि सलाम ईसाई थे। इसकी बहस हम पहले भी सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं। दोनों खींचातानी करने लगे, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम क्यों झगड़ते हो इब्राहिम अलैहि सलाम के बारे में, आया ले किताब व मा उन्जिलत तौरात वल इंजीलु इल्ला मिन बादी, तौरात और इंजील तो इसके बाद उतरी है। आपको पता है इब्राहिम अलैहि सलाम के 1000 ईयर्स बाद तौरात उतरी, और इंजील तो 3000 ईयर्स के बाद उतरी। तो तुम किधर से इब्राहिम अलैहि सलाम को यहूदी, मूसा अलैहि सलाम तो उनकी औलाद से थे, बहुत बाद में आए, उनके बाद फिर ये यहूदियत शुरू हुई, ईसाइयत भी बाद में शुरू हुई, तो किधर से जाके तुमने इब्राहिम अलैहि सलाम को बना दिया कि वो यहूदी थे, या वो कह रहे हैं ईसाई थे? अफलाता क्यों, तुम्हें अकल नहीं है? सेम इज विद अस, आज कहते हैं आप बताएं अब क्या है, हनफी है, शाफी है, क्या? नहीं, पहले आप ये बताएं, अगर कह दें मुसलमान है सिर्फ, नहीं ये तो कोई बात नहीं है। अगर कह दें कि सहाबा फिर क्या थे, ताबईन क्या थे, तो वो नहीं उनको सेटिस्फाई करता, ठीक है। इमाम अबू हनीफा खुद क्या थे, इमाम शाफी खुद क्या थे, वो भी तो मुसलमान ही थे, या वो भी अपने आप को हनफी या शाफी कहलाते थे? लेकिन देखें, किसी मजहब को फॉलो करना, मजहब से मतलब ये है कि आप फिकह हनफी को फॉलो करते हैं, या फिकह शाफी को फॉलो करते हैं, या फिकह मालिकी को फॉलो करते हैं, फिकह हनबली को फॉलो करते हैं, किसी को भी फॉलो करते हैं आप, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मगर उसमें इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेना कि बस अगर हनफी हैं आप तो बस ठीक है, अगर आप हनफी नहीं है तो बस आप तो कुछ भी नहीं है, आप तो जैसे क्योंकि काफिर ही हो गए, और आप शाफी हैं तो बस तब आप ठीक हैं, ये कौन सा तरीका है? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे ये बताएं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे फिर? उनसे उनके बाद जो सहाबा थे वो क्या थे? उनका ईमान नहीं कबूल? नऊजु बिल्ला, कुछ तो थे ना वो, मुसलमान थे। लेकिन आज हमारे लिए सिर्फ मुसलमान का वर्ड होना हमारे लिए काफी ही नहीं है, जब तक हम किसी के साथ अपने आप को ना अटैच कर लें और उसके नाम से पहचाने ना जाएं, और फिर उसमें इतनी शिद्दत ना इख्तियार कर लें कि बस आप हरफी आखर बस यही है और इसके बाद कुछ नहीं। भाई इमाम अबू हनीफा तो खुद फरमाया कि मेरी बात के आगे तुम्हें कोई हदीस मिल जाए तो मेरी बात को दीवार पे दे मार मारना, फिर भी नहीं समझ आते। तो वो उनके भी यही मसले थे। और लेकिन देखें, अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ दोनों अटैच करना चाहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितनी है बड़ा ऑनर दिया कि उनके साथ अटैच, उनको अपने करना को भी लोग ऑनर समझते हैं, कि यहूदी वो कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं और ईसाई भी कहते हैं, हर एक अपने अपने जगह पे ये कह रहा है कि वो हम में से बिलोंग करते थे। वो एक ऐसे पैगंबर हैं जिनको सारे ही मानते हैं। हा अंतुम हा उलाई हा जजतुम फीमा लकुम बिही इल्म, क्या तुम वो लोग हो जो बहसे करते हो उस मामले में जिसमें तुम्हें इल्म है? फलीमा तो हा जूना फीमा लैसा लकुम बिही इल्म। उस देखो, तुम उसमें तो बहस करते हो, समझ आती है बहस करते हो, जो कोई तुम्हारी जो किताब के कोई मामलात हैं, कोई तुम्हारे दीन के मामलात हैं, उसमें तो तुम झगड़ते हो, लेकिन अकल तो करो, उसमें क्यों झगड़ते हो जिसमें तुम्हें कोई इल्म ही नहीं है? जिसमें कोई इल्म है उसमें झगड़ते फिर भी कोई बात समझ आती है, जिसमें तुम्हें कोई इल्म ही नहीं है उसमें झगड़ रहे? और किस चीज का इल्म नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसको बिलोंग करते थे? दीन इब्राहिमी क्या था? तुम्हें कुछ नहीं पता है फिर भी तुम उसमें झगड़ रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी पेशीन गोइयां बहुत अच्छी तरह जानते थे। फीमा लकुम भी इल्म में वो आती हैं, और भी उनके जो दीन के मामलात थे उनमें झगड़ते थे, उनको इल्म था उनका उसमें झगड़ते थे। तो समझ आती है कि उसके अंदर झगड़ है। तुम्हारे जो इल्म, जो तुम्हारी किताबों में कोई चीज है उसके अंदर तुम झगड़ा कर, लेकिन जिसका तुम्हें कुछ सर पैर का भी नहीं पता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए भी इतना अरसा हो गया, उनके तो सहीफे भी मौजूद नहीं कि जिनको पढ़ पढ़ के इनको पता चल गया हो कोई, तो फिर उसमें क्यों झगड़ रहे हो? इसका मतलब है जिस चीज के बारे में इल्म ना हो नहीं उसके ऊपर बात करनी चाहिए। आज आप देखें मुसलमानों का क्या हाल है। अल्लाह अकबर, यकीन जाने हर बंदा खुद को सबसे बड़ा आलिम दीन समझता है, इसीलिए हर मजलिस में बैठ के लोग इतने आराम से कह रहे थे, हाँ हाँ जी कुरान में तो ये लिखा है, हदीस में तो ऐसा है, नहीं जी हमारा दीन तो ये नहीं कहता। एक जगह मैंने, अब देखे ना, जब नहीं इल्म होता, अब उन ऐसे लोगों से पूछे ना कि उन्होंने कुरान कितना पढ़ा है, उन्होंने हदीस पे उनको कितना अबूर है, उनकी दीन कितनी समझ है दीन की, तो कोरे होंगे बिल्कुल, लेकिन बातें ऐसे करना कि जैसे सारा कुछ इनको ही पता है। तो एक जगह पे मैंने अपने कानों से ही बात सुनी, अल्लाह अकबर, कि कुछ खवातीन ये बात कर रही थी। एक ने कहा, देखिए हिजाब जो है ना, हंसी आती, हिजाब जो है ये फर्ज नहीं है। क्यों नहीं फर्ज? उसने कहा, उन्होंने कहा इसलिए कि देखो फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है, तौहीद, नमाज, रोजा, जकात, हज। अगर हिजाब फर्ज होता तो इनमें ना होता। अल्लाह की बात, मतलब कोई कॉमन सेंस, कोई अल्लाह हु अकबर, अल्लाह ताला ने इसी फरमाया ना, अफला ताकिलून, अकल नहीं है तुम्हारे अंदर, कुछ समझ नहीं। वो उनमें तो ये भी नहीं है कि सच बोला करो, उनमें तो ये भी नहीं कि सूद ना खाओ, उनमें तो ये भी नहीं कि बेईमानी ना करो, तो क्या सारी चीजें सही हो गई? उनमें तो ये भी नहीं कि जुल्म ना करो, तो जुल्म भी सही हो गया। हाँ? तो देखो जरा कि हम किन चीजों में बहस करते हैं। एक ने कहा, बेचारी अब खवातीन पता नहीं होता उनको, तो उन्होंने कहीं से तो कुछ जस्टिफिकेशन लानी है ना, उन्होंने कहा जी मैं तो कुरान में पढ़ा है, उसमें लिखा है कि ईमान वाली जो औरतें हैं ना उनके लिए है हिजाब, तो हम कौन से ईमान वाली हैं, हमारा तो ईमान ही नहीं। अल्लाह अकबर। अब ये देखें कि फलीमा तो हाजुना फीमा लैसा लकुम बिही इल्म, जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है तुम उस पर क्यों बहसे करते हो, क्यों उसके ऊपर झगड़ते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं है, तुम फिर बहसे लेके बैठे हुए उनकी, और हर कोई कह रहा है जी मैं वो हम में से थे। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। ये बात समझ आ जाए ना तो और क्या चाहिए हमें, इतनी सी बात समझ लो सारी बातों के हमारे ना मसले ही खत्म हो जाए। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, याद क्यों नहीं कर लेते ये, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जब किसी चीज की समझ ना आए ना तो क्या करो, अल्लाह जानता है मैं नहीं जानती। जब कोई फैसला अल्लाह का पसंद ना आए ना, मेरे साथ ये क्यों हो गया, तो कहो अल्लाह जानता है मैं नहीं जानती। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला, अल्लाह मुझे कहता है तुम नहीं जानते तो मैं नहीं जानती, मान लो ना मैं नहीं जानती। ये मानना बड़ा मुश्किल होता है ना, मैं ही तो सब कुछ जानती, मैं जो ये बेहतर लगता है मेरे साथ ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो गया, अफ्रीका में बच्चे भूखे क्यों मर रहे हैं, फलां हैंडीकैप क्यों पैदा हुआ है, अल्लाह ने उसके साथ क्यों ऐसा कर दिया, वो तो छोटी बच्ची थी वो क्यों मर गई, उसका क्या कसूर था। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। हाँ ये चीज इंसान को झुका देती है ना, वो झुकना तो चाहता नहीं है, उसको अपनी अकल सबसे बड़ी लगती है। मुझे तो वैसे इसके अंदर कुछ समझ नहीं आती, मुझे तो नहीं समझ आती कि वो तो बच्चे हैं उनका क्या कसूर था, मुझे तो नहीं समझ आती उसको ये बीमारी क्यों लग गई, उसने ऐसा क्या किया था। तुम्हें इसलिए नहीं समझ आती कि तुम्हें नहीं समझ, तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है, अल्लाह को इल्म है। तो झुक जाओ अल्लाह के आगे, उसके इल्म के आगे, वो अल अलीम है। कोई क्यों नहीं झुकते, उसी की ये सिफत है ना, क्यों नहीं उसकी सिफत के आगे सरेंडर कर देते। देखिए मुस्लिम मुस्लिम है ना, यहाँ पे कह दो कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम सिर्फ मुंह से बोलने की बात नहीं होती, सबमिशन कहाँ से होती है, सबमिशन जाहिरी भी होती है और बातनी भी होती है। जाहिरी सबमिशन क्या है कि आप वो अल्लाह ताला की जो जो भी बात है उसके आगे आप झुक गए, जाहिरी तौर पे आपने अपने आप को सजदे में डाल दिया, रुकू में डाल दिया। अंदर से बातनी सबमिशन क्या है कि आपने मान लिया, आपने अपनी विल को अपनी अना को झुका दिया, आपने कहा कि हाँ जो अल्लाह ने कहा है वही सही है क्योंकि उसको इल्म है मुझे नहीं इल्म, ये भी सबमिशन है। तुम आगे फिजिकली जाहिरी तौर पे सजदे करते रहे और अंदर जो मानना ही ना हुआ, अंदर ने सबमिट किया नहीं हुआ, आप जाहिर में सबमिट करते जा रहे, मुस्लिम तो ना ना हुए फिर। मुस्लिम वो है अंदर बाहर दोनों से सबमिट किया हो, उसकी अकल ने सबमिट कर दिया हो कि मेरी अकल कुछ नहीं है, अल्लाह ही है सब इल्म रखने वाला, मुझे क्या हो पता है मैं क्या चीज हूं, ये रवैया होना चाहिए। समझ आई? तो हम में से कितनों का ये रवैया होता है, कितने लोग कह देते हैं वल्लाहु यालम हो, अल्लाह जानता है, और कितने लोग उसके बाद कहते हैं मैं नहीं जानती। जरूरी है कि जो भी चीज अल्लाह ताला के पास हिकमत की हो वो मैं और आप जरूर जाने, ये जरूरी है ये अल्लाह हमें बता के फिर वो फैसला करे, ये देखो इसके अंदर ये हिकमत है, फिर हम कन्विंस हो जाएं तो फिर वो एग्जीक्यूट करे अपने फैसले। तो अल्लाह क्या नाउज़ बिला हमसे पूछने लगे, पहले हमें हिकमतें बता के सेटिस्फाई करने लगे तो फिर वो करे कोई काम। कैसी बातें करते हो, हमारी आफियत इसी में हम कह दें अल्लाह जानता है मुझे नहीं पता, जो भी हिकमत होगी मुझे नहीं पता, जरूरी मैं खोज के निकालू हिकमतें। समझ आ जाती है ठीक है, नहीं समझ आती तो कोई मसला नहीं, मुझे बस ये यकीन है इसमें हिकमत है, बस बात खत्म हो गई। अब नहीं अगर समझ आ रही तो उसके पर बेचैन रहना, देखिए हो क्या हिकमत होगी इसके अंदर, मेरी तो समझ में नहीं आती, क्या समझ है आपकी, क्या चीज हूं मैं और आप। तो याद रखें वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालम, कितनी दफा कुरान में ये आ चुका है, फिर भी हमारे जो इल्म का तकब्बुर है ना वो नीचे नहीं आता। तो अल्लाह ताला फरमाता है उसको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। माँ काना, अब बता दिया क्या थे, माँ काना इब्राहिम यहूदियम वला नसरानियम, ना तो वो यहूदी थे ना नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमन, वो भी मुस्लिम ही थे, लेकिन कैसे मुस्लिम थे, वो हनीफ थे, हनीफ नाम भी रखते हैं, और कुराने पाक में ना जगह जगह इब्राहिम अलैहि सलाम का यही तारुफ कराया गया। इब्राहिम अलैहि सलाम देखें दुनिया में आके तो अपने आप को नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो ना यहूदी था ना नसरानी था, तुम लोगों ने क्या बना के रख दिया मुझे, वो तो नहीं कह सकते ना। लेकिन अल्लाह ताला तो है ना जो हई और कयूम है, हजारों साल गुजर गए इब्राहिम अलैहि सलाम को, गुजरे हुए भी हजारों साल गुजर गए। उसके बाद अल्लाह ताला इस कुरान में बता रहा है, गवाही दे रहा है, उनकी बरात फरमा रहा है। ना तो वो ये शिर्क करने वाले थे जो ईसाइयों ने शुरू किया हुआ, ना वो ये यहूदियों वाला शिर्क करते थे, वो तो हनीफ थे और मुस्लिम थे। हनीफ कौन होता है? हनीफ वो जो डेडिकेटेड हो, जो फोकस्ड हो, जिसको कोई चीजें डिस्ट्रैक्ट ना करें, वो इंक्लाइंड हो एक तरफ, झुका हुआ हो एक तरफ। वो किस तरफ उनका झुकाव था? अल्लाह की तरफ। देखिए ना अल्लाह की तरफ उनकी इतनी डेडिकेशन थी, इतने फोकस थे, सारा कुछ छोड़ दिया एक अल्लाह के लिए, सारा कुछ छोड़ दिया। क्या क्या नहीं उन्होंने कुर्बानियां दी। और मुस्लिम थे वो, तो अल्लाह के फरमा बरदार थे। इत काला लहू रब्बुहु अस्लिम काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। वो तो इतने खूबसूरत शख्सियत थे कि अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया आप झुक जाएं, आप मुती फरमा बरदार हो जाएं, अस्लिम। तो उन्होंने कहा मैं इस्लाम ले आया, मैं मुती हो गया, आई सबमिटेड। वो तो ऐसे थे, तो तुम तो बात ही नहीं सुन रहे हो, तुम तो शिर्क करने लगे हुए हो। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो तो मुशरिकों में से ही नहीं थे, बल्कि वो तो शिर्क से इतने बेजार थे, इस कदर उनको शिर्क से नफरत थी कि देखें उन्होंने जब ये आके घर बनाया भी अल्लाह का, तो उन्होंने उनकी दुआएं यही थी, हम सूरह बकरा में पढ़ चुके, ए अल्लाह शिर्क से मेरी औलाद को बचाना। एक हमें क्या बात पता चली कि दुआएं बड़ों की कैसी होती थी, जो बड़े लोग थे उनकी दुआएं। हमने पहले एक दुआ भी पढ़ी है जो हन्ना की थी, हजरत मरियम की वालिदा की थी। उसी दुआ से अगर हमने उस वक्त नहीं भी मांगी अपने बच्चों के लिए, जिस वक्त वो पैदा हुआ हमें पता ही नहीं था, आज मांग लें, आज कहें या अल्लाह मेरी औलाद को और इनकी नस्लों को आगे शैतान मर्दूद से अपनी हिफाजत में रखना, अपनी पनाह में रखना। इसी तरह शिर्क से अल्लाह मेरी औलाद को बचा के रखना। तो उन्होंने अपनी औलाद को लाके इधर बसाया था कि शिर्क से महफूज रहे, इतनी उनको नफरत थी शिर्क से। उन्हें तो वो तो बुत शिकन थे, बुतों को तोड़ देने वाले थे, हालांकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बड़े हुए फिर उसके बाद, उन्होंने तो आग में डालने का फैसला कर लिया उनको, लेकिन परवाह नहीं की उन्होंने। तो अब तुम कहते हो ना कि इब्राहिम हमारे थे और वो कहते हैं इब्राहिम हमारे थे, तो पता है इब्राहिम किसके थे? इन अवलन नासी बि इब्राहिम अल्लज़ीन तबऊहु व हाज़ा नबी वल्लदीन आमन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तो क्लोजेस्ट कौन थे? लल्लदीन तबाऊ, वो जिन्होंने उनकी पैरवी की, उनके जमाने में जो उनको फॉलो करने वाले थे वो उनकी सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट थे। और वहाद नबी, और ये नबी सबसे ज्यादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाले, नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक रोल मॉडल बनाया, एक रोल मॉडल बनाया ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर नबी के लिए नबियों में से कोई दोस्त होता है, ठीक है, हर नबी के लिए कोई दोस्त होता है, और मेरे लिए कौन है? तो फरमाया कि मेरे वली दोस्त अंबिया में से मेरे बाप और अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। फिर आपने यही आयत तिलावत फरमाई, ठीक है, तो ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तिलावत फरमाई कि मेरे जो यानी मेरे वली दोस्त, वैसे तो सारे अंबिया एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन क्लोजेस्ट में किससे हूँ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। इसलिए आप देखें दुरूद शरीफ में भी हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, हालांकि और बहुत सारे पैगंबर हैं। और वल्लदीन आमन, और वो लोग जो ईमान लाए, किन पे ईमान लाए? जो इस नबी पे ईमान लाए, वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्लोजेस्ट हैं, और सबसे पहले उनमें सहाबा कराम हो गए, क्योंकि ये नबी भी शिर्क से बेजार हैं और इनके मानने वाले भी शिर्क से बेजार हैं। तो तुम क्या कहते हो, तुम इनसे क्लोजेस्ट हो, तो तुम कैसे इनसे क्लोजेस्ट हो गए? इत्तेबा इंसान को क्लोज करता है,
सिर्फ ये नस्ली तौर पे होना कि हम उनकी औलाद में से हैं, क्योंकि आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनसे आगे फिर बनी इसराइल हुए, तो वो समझते कि हम बनी इसराइल में यहूदी भी हैं और ईसाई भी हैं। तो नस्ली तौर पे किसी के साथ निस्बत हो जाना, ये आपको, ये कोई विरासत थोड़ी है कि इससे आप दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। हम उनके वारिस हैं तो इसलिए हम, यानी नस्ल के होने से नहीं होता, सहाबा कराम में उनकी नस्ल में से नहीं होंगे, लेकिन वो उनसे किस तरह क्लोजेस्ट हैं, इसलिए कि उनका इत्तेबा करने वाले। तो इससे पता चला कि इत्तेबा कितना जरूरी है। हालांकि सहाबा तो हजारों साल बाद आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई हजारों साल बाद आए। आप किसी से क्लोज होना चाहते हैं ना, उसका इत्तेबा करें, जैसे हमें दिल करता है जब हम ये ख्वाहिश करते हैं कि हाय काश हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में होते, काश मैं उस वक्त पैदा हो जाती। तो नहीं पैदा हुई कोई मसला नहीं, अब उसमें कुछ कोई आप रिवर्स नहीं कुछ कर सकते, आपकी अपनी मर्जी नहीं है आपके पैदा होने में, लेकिन कैसे मैं क्लोज हो सकती हूँ, उनका इत्तेबा करके। आपको जो पसंद है, आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम पसंद है, उनकी तो जिंदगी का हमें जो चीजें कुरान पाक से पता चलती हैं वही हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जिंदगी की एक एक बात, एक एक अदा, एक एक उठना बैठना, एक एक मुस्कुराना, एक एक घर में कैसे थे, बाहर कैसे थे, आदात उनका, उनकी हर बात जो है ना रिकॉर्डेड है। तो आप आसानी से इत्तेबा कर सकते हैं। और हमने पहले क्या बात पढ़ी थी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। और अगर तुम भी मोहब्बत का दावा करते हो अल्लाह से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा करो। तो इत्तेबा करने से ना ये टाइम की जो दूरियां, जमानों की दूरियां, ये स्क्वीज हो जाती हैं, ये खत्म हो जाती हैं। आप किसी से क्लोज होना चाहते हैं, आप समझते हैं हमें उस जमाने में होती, उससे जरूरी नहीं आप क्लोज होते। देखें उस जमाने में तो अबू लहब भी था, अबू जहल भी था, तो वो क्लोज तो नहीं हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, करीब तो नहीं हुए, हालांकि वो वहीं रहते थे, उसी बस्ती के थे, लेकिन बाद में कई आने वाले आप सरसम से करीब हो सकते हैं उनका इत्तेबा करके। तो ये एक नुस्खा है जो आपको दिया जा रहा है कि हर वक्त ये ही रोने ना रोते रहो कि मैं यार क्यों नहीं पैदा हुई उस वक्त, आए कैसा होता मैं उस वक्त होती, बल्कि उनका इत्तेबा करो ताकि फिर कयामत के दिन उनसे करीब हो, इससे आपकी उन कुर्बत हो जाएगी। तो आपकी जो महबूब हस्ती हैं उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना, ये आपको उनसे करीब कर देगा। इसी तरह ये भी हमें पता चला कि वल्लाहु वलीजुल मोमिनीन, सारे ईमान वालों का अल्लाह वली, जितने अल्लाह वलीयुल्लदीना आमनू, ये पहले भी हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं ना, अल्लाह वली है ईमान वालों का। तो ईमान वाले जो सच्चा ईमान रखता होगा, अल्लाह ताला उसका दोस्त है, उसके करीब है। तबरानी में हदीस आती है, ये नुस्खा है अल्लाह ताला की विलायत पाने का, अल्लाह की दोस्ती पाने का। सुने इस नुस्खे को, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए बुग्ज रखे, अल्लाह के लिए दोस्ती करे और अल्लाह के लिए दुश्मनी करे, वो अल्लाह की विलायत पा जाएगा। समझ आई? अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह के लिए दुश्मनी। किसी के साथ मेरा वैसे कोई बैर नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए दुश्मनी है कि वो अल्लाह ताला के ऊपर बुरी बातें करता है, वो मुसलमानों को टॉर्चर करता है क्योंकि वो एक अल्लाह को मानते हैं, तो मुझे उससे बोझ है। मुझे किसी से मोहब्बत क्यों है कि वो इस्लाम का हामी है, वो मुसलमानों के साथ अच्छा है, तो ये अल्लाह की खातिर मोहब्बत है। किसी से दोस्ती क्यों है, क्योंकि ये मुझे अल्लाह से करीब करता है, मुझे इसलिए ये अच्छा लगता है। और किसी से दुश्मनी क्यों है, उसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, मेरे साथ उसके जायदादों के कोई झगड़े नहीं है, लेकिन उसके साथ मेरा बोझ क्यों है। बोझ इसलिए कि जब वो अल्लाह की रिस्पेक्ट ना करे तो मुझे भी उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे वो इसलिए बुरा लगता है। वो मेरे नबी के ऊपर कोई बात करता है, मेरे दीन के ऊपर कोई बात करता है, वो इसलिए बुरा लगता है। तो ये दीनी गैरत जो है ना, जब तक इंसान के अंदर ना आए वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता। हम दोस्तियां क्यों करते हैं, यहां से कोई फायदे मिलने हैं, वो चाहे अल्लाह के कितने भी नाफरमान हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे फायदे तो मिलते हैं, ये हमारे बिजनेस पार्टनर है।
इनके साथ इसलिए करते हैं कि यहाँ पे इनकी पोस्ट बहुत बड़ी है, तो इनके साथ कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं, इसलिए इनके साथ दोस्तियां रखी हैं। इनसे मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि ये बड़े मॉडर्न है। हाँ, तो ये अगर मेयार हैं तो कोई फिर कैसे अल्लाह के वली बनेंगे? दोस्ती वहां पे करनी है जो जहां जो अल्लाह के करीब ले जाने वाला। किसी से दूरी कब करनी है? जो अल्लाह से दूर है उससे आप भी दूर हो जाए, उससे करीब हो जो अल्लाह से करीब है, उससे मोहब्बत करें जो अल्लाह की मोहब्बत तक ले जाए। ये तो वैसे बताने की बातें भी नहीं है। जब मोहब्बतें होती हैं ना किसी से, तो ये खुद ही समझ आ जाती हैं बातें, ठीक है ना?
वद्दत्तौइफ़तु मिन अहलिल किताबी, बहुत ज्यादा शदीद ख्वाहिश है अहले किताब की, लव युदिल्लूनकुम, कि वो काश तुम, वो गुमराह कर सके तुम। वो कहती हैं कि ये क्यों सीधे रास्ते पर है, वो उनको ये होता है कि ये क्यों चोजन वन हो गए, वो चाहते हैं तुम्हें भी भटका दें। वमा युदिल्लूना इल्ला अन्फुसहुम वमा यशऊरून, और वो नहीं गुमराह करते मगर अपने आप को, और उनको शऊर नहीं है इस बात का। वो किसी और को नहीं गुमराह कर रहे, वो अपने आप को ही गुमराह करते हैं। अब यहां पे क्या बात है कि ये जो अहले किताब थे, खास तौर पे यहूदियों का ये मामला था कि वो मुसलमानों को देखकर इंतहाई हसद की वजह से वो चाहते थे कि बस ये हमारे दीन में नहीं आए, ये नहीं उनकी थे कि हमारे दीन में आ जाए, बस ये अपने दीन पे भी ना रहे, जो कि आज भी बहुत सारे लोगों की है। वो ये नहीं कहते कि आपको कन्वर्ट करके अपनी तरफ ले जाए, वो कहते हैं बस इस्लाम को ना ये फॉलो करें, इससे हट जाए, इसको छोड़ दें। यही उस कश्मीर की चाहत कि ये इनकी शदीद ख्वाहिश है, और इसके लिए वो फिर कुछ साजिशें भी करते थे, मकरो फरेब के जाल भी बिछाते थे। और वो ये नहीं समझ रहे कि जो काम वो ये कर रहे हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका काम तो, आपका मिशन तो चलता रहा। उनका तो ये था कि वो किसी तरह मुसलमानों को आपसे दूर कर दें और इसके जरिए आपको अकेला कर दें, ये मिशन नाकाम हो जाए। और उनकी ये जो इमामत उनसे छिन गई थी, वो अब मुसलमानों के पास भी ना रहे। अब इसके ऊपर यहां पर हमें बता दिया गया कि जो किसी के लिए घड़ा खोदता है ना, वो अपना खुद नुकसान करता है। जो किसी को भटकाना चाहता है ना, वो दूसरे को नहीं भटका रहा होता, वो अपने लिए एक तबाही का गड़ा खोद रहा होता है। वो कहते हैं ना, वो मुहावरा भी है ना, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है खुद उसमें गिर जाता है, तो खुद ही गुमराह हो गए। अब देखें, आप सल्लम को ना फर्क पड़ा, ना आपके को मिशन को फर्क पड़ा, और इनका क्या हुआ? इसी तरह कई लोग दूसरों को वैसे ही भटकाना चाहते हैं, किसी के खिलाफ करना चाहते हैं, उनके वालदेन के या उनके घर वालों के, तो वो किसी का नहीं बुरा करते। अल्लाह ताला जो वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अल्लाह उनके लिए जो दूसरे के लिए गड़ा खोद रहे होते हैं, वो उनके लिए अल्लाह ताला तबाही का सामान कर देता है। या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा तकफुरूना, तुम क्यों कुफर करते हो अल्लाह की आयात का, अल्लाह की आयात का इनकार क्यों करते हो? इसमें कुरान की भी बात आ गई कि कुरान की आयात को क्यों तुम सिर्फ अपने हसद की वजह से, इसकी वजह से इनकार करते हो, तो तुम क्यों ऐसे करते हो? वह अंतुम तशहदून, जबकि तुम गवाह हो। ये तो देखें इनकी गवाही कैसी थी। इनकी गवाही ये थी कि ये लोग अकेले में मानते थे इस बात को कि ये सच्चे रसूल हैं,
پھر بھی انکار کرتے تھے، ان کے دل گواہی دیتے تھے، اور اللہ تو جانتا تھا نا ان کی باتوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی، تو اندر سے ان کو پتا تھا پھر بھی انکار کر رہے ہیں. تو لیما تکفرونا بھی آیا تلا. دوسرا معنی لیما تکفرونا کا کیا ہے؟ کہ یعنی تم اپنی تورات میں یہ احکامات پاتے ہو، تم تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پاتے ہو، پھر بھی تم انکار کر رہے ہو ان آیات کا. تو لیما تکفرونا، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ اور جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں. اور اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی انسان کو غلطی نہیں لگتی، پھر بھی نہیں مانتے تھے. ڈٹائی، ضد، حسد. اب جب دے ہٹ دھرمی پہ انسان اتر آئے نا، آپ اس کو سامنے سورج بھی لائیں گے تو کہے گا نہیں سورج نہیں، دن نہیں. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل. اب دیکھیں ان کو کتنے کنونسنگ انداز میں، کیوں تم ایسے کر رہے ہو؟ وائے، کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کر دیتے ہو؟ ہاں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ایسے ہے. ایسے کر کے بات کو کرنا کہ دوسرا کنفیوز ہو جائے، اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ حق کیا اور باطل کیا. لوگ ان سے پوچھتے تھے کیا یہ سچے رسول نہیں ہیں؟ تو کہتے تھے ہاں رسول تو ہیں، مگر عربوں کے لیے، ایسے سب کے لیے تھوڑا ہی ہے، تاکہ یہ نہ کہیں مان جائیں، یہ ہمیں چھوڑ کے تو ان کی طرف نہ چلے جائیں. لیکن جو دیکھیں، جو سچا، جو ان بائسڈ ہو کے دیکھنے والا ہو نا، جو کہ یہ تعصبات کو پیچھے رکھ کے دیکھنے والا ہو، تو ایسے لوگ بھی تھے جیسے یہود کے بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، جو اسلام لے آئے تھے اور وہ مانتے تھے ہماری کتاب میں ساری باتیں لکھی ہیں. کیوں تم اتنا اس کو گڈمڈ کرتے ہو کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے؟ تو اصل مجرم جو تھے نا وہ بڑے تھے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے. کسی کی بھی بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہونی چاہیے ایسے کہ وہ گمراہی کر دے کیونکہ ہمارے بڑے عالم کہہ رہے ہیں اس لیے ہم بھی وہی مانیں گے. ٹھیک ہے، ان کا جرم بڑا تھا، لیکن اس کی وجہ سے باقی سارے لوگ بے گناہ نہیں ہو جاتے، ایسا نہیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم چھپاتے ہو حق کو جبکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ حق ہے، پھر بھی تم چھپا جاتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو چھپایا، تو یہ دونوں جانتے تھے، یہودی بھی جانتے تھے اور عیسائی بھی جانتے تھے، اور تم جان بوجھ کے چھپاتے ہو حق کو. اور آج بھی بعض لوگوں کا یہی طریقہ ہے، حق کو چھپا جانا، ایسے بات کرنا کہ نہ کچھ سمجھ آئے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، حق ہے کہ باطل ہے، حلال ہے کہ حرام ہے. ہاں نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تاکہ لوگ کہیں ہمارے سے بھاگ ہی نہ جائیں. اگر ہم نے کہہ دیا کہ نہیں یہ حرام ہے، تو لوگوں کو یہ نہ ہو کہ ہماری کلاس چھوڑ کے چلے جائیں، یا ہماری مجلس چھوڑ کے چلے جائیں، یا ہمارے فین ہیں اتنے یہ لوگ تو پھر ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہمیں اتنا سنتے ہیں یہ لوگ. نہیں، جو حق ہے اس کو حق بیان کرنا چاہیے، جو باطل ہے اس کو باطل بتانا چاہیے، گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ طریقہ ان کا تھا، اہل کتاب کا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیے.
ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءنا نِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون